समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में होंगे आपके लिए देश दुनिया के समाचार और लेकर आए हैं हम आपके लिए काफी रोचक जानकारी। तो आइए आगाज करते हैं परिक्रमा कार्यक्रम का। और आज के संक में मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय।
Hello Nikhil, hello and good afternoon. You're tuned to Parikraman 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Nikhil. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
Bilkul. भारत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर बांग्लादेश की टिप्पणियों को अस्वीकार किया। कहा, बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे।
भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र एडेड टू यूनेस्को'स मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर।
विश्व भर में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है।
हमास रिजेक्ट्स इजराइल्स लेटेस्ट सीजफायर ऑफर, सेज इट इज रेडी टू रिलीज ऑल हॉस्टेजेस टू एंड द वॉर।
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।
And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Heritage Day and Good Friday. Well, World Heritage Day is the shared wealth of humankind. Protecting and preserving these valuable assets demand the collective efforts of the international community. Therefore, each year on 18th April, every nation celebrates the World Heritage Day to raise public awareness about the diversity of cultural heritage and the efforts that are required to protect and conserve it. Our heritage is not just built of stones, scripts or ruins. It lives in every whisper of a temple wall, every carving on ancient forts, and every folk song passed down through generations. It tells stories of who we were, what we stood for, and how we endured. World Heritage Day is a heartfelt reminder that these timeless treasures are not only to be admired, but protected. This year's theme, Heritage Under Threat from Disasters and Conflicts, Preparedness and Learning from 60 Years of ICOMOS Actions, reminds us that preserving our past is a key to protecting our future. The theme marks 6 decades of International Council on Monuments and Sites efforts in heritage conservation, and it's a global prompt to take stock not just of what we have built, but of what we are at risk of losing.
जी हाँ श्रोताओं, विश्व विरासत दिवस आज मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत को अनमोल मानते हुए तथा लोगों में इन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने के उद्देश्य से ही इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया था। यूनेस्को, जिसका कि पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, वो दुनिया भर में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए काम करता है। कि किसी भी राष्ट्र का इतिहास और उसके वर्तमान तथा भविष्य में एक नींव रखी जाती है जो देश को आगे लेकर के जाते हैं। कहा जाता है कि जिस देश का इतिहास जितना गौरवमय होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। जिस तरह से बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी हुई इमारतें और लिखा गया साहित्य हमेशा सजीव रहता है, इसीलिए हम इस दिन को मनाते हैं। और आपको बता दें कि इसमें यूनेस्को के सदस्य देशों ने वर्ष 1972 में विश्व विरासत सम्मेलन में इस दिन पर काम करने के लिए इसे महत्वपूर्ण रूप से अपनाया था। आपको बता दें, विश्व विरासत के स्थल किसी भी राष्ट्र और सभ्यता तथा उसकी प्राचीन संस्कृति के महत्वपूर्ण परिचायक माने जाते हैं। नवंबर 1977 में भारत इसका हिस्सा बना था और आज विश्व विरासत सूची में 1223 स्थल शामिल किए गए हैं जिन्हें पूरी मानवता के लिए मूल्यवान समझा जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो इनमें 952 सांस्कृतिक स्थल, 231 प्राकृतिक स्थल और 40 ऐसे स्थल शामिल हैं जिनका कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से सम्मिलित महत्व है। और अक्टूबर 2024 तक 196 देश विश्व विरासत सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक विरासत सूची में लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। जुलाई 2024 में सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में असम से मोइदम्स यानी कि अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली के शिलालेख के साथ ही इसमें एक जोड़ किया गया और साथ ही विश्व की अब धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें भारत के 43 स्थल शामिल किए गए हैं और यूनेस्को की सूची में 62 स्थल शामिल हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि 1983 में आगरा के किले के साथ ये सूची शुरू हुई थी, उसके बाद ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं को भी शामिल किया गया। इन स्थलों को न केवल ऐतिहासिक रूप से एक प्रतीक के रूप में संरक्षित किया गया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बताने, सीखने और समझने के लिए भी इन्हें महत्वपूर्ण तरीके से संरक्षित भी किया गया है।
Yes, absolutely, Nikhil. And the heritage of a civilization cannot be merely etched only in stone or be contained in scriptures. It lives through the timeless principles that have shaped the spiritual and cultural identity of the people. On World Heritage Days, the world reflects on the importance of preserving cultural legacy. India's evolving approach to heritage offers a compelling narrative. Here, museums play a major role. No longer confined to dusty artifacts and silent galleries, Indian museums today are becoming dynamic spaces where the past meets the present, not as a relic but as a living, breathing reality. Hence, museums must evolve beyond preservation. They must breathe life into heritage, creating immersive experiences where ancient concepts like karma, dharma, and ahimsa are not viewed as distant philosophies but as lived experiences. Visitors aren't passive observers. They become participants engaging with timeless wisdom that feels deeply relevant. Across India's vast cultural landscape spanning Jain, Buddhist, Vedic and Sikh traditions, a shared value system endures. Modern museums reveal this interconnectedness, helping visitors not just see history but feel a sense of belonging and pride. They are no longer just places where artifacts are stored. They have become spaces where history comes alive, where myths, memories and traditions are woven into powerful narratives that resonate with today's generation.
श्रोताओं, ये महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को हाल ही में यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया और ये भारत के शाश्वत ज्ञान तथा समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता ही है। गीता और नाट्य शास्त्र दोनों ने सदियों से सभ्यता तथा चेतना का पोषण किया है और उनके अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रही है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत के अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 14 स्थान शामिल हो चुके हैं। ये एक वैश्विक पहल है जो उत्कृष्ट मूल्य के साथ दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करती है। चूंकि ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों, पांडुलिपियों और दस्तावेजों को मान्यता देती है, ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और ऋग्वेद, शांतिनाथ चैत्र, गिलगित पांडुलिप तथा अन्य के साथ सूची में शामिल किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
Absolutely, and India has taken several meaningful steps to protect, restore and promote its vast cultural and natural heritage. These initiatives reflect the government's commitment to safeguarding the country's timeless traditions and historical treasures. And these steps are not limited to protect the heritage sites of India, but the world also. As Prime Minister Modi observed that India considers the preservation of global heritage as its responsibility. India is cooperating for heritage conservation in the countries of the Global South, along with its own heritage, to preserve the heritage sites like Angkor Wat in Cambodia, Cham temples in Vietnam and Stupa in Bagan. Myanmar, India has announced contribution of $1 million to the UNESCO World Heritage Center to be used for capacity building, technical assistance and conservation of world heritage sites.
अभिषेक, विश्व विरासत दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमारी विरासत की रक्षा करना हम सभी के लिए एक साझा जिम्मेदारी है और प्राचीन स्मारकों से लेकर कालातीत साहित्य तक भारत मजबूत राष्ट्रीय प्रयासों तथा वैश्विक सहयोग के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना जारी रखे हुए है। ये सभी प्रयास ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी समृद्ध विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे, शिक्षित करे और उन्हें एकजुट भी करे।
Yes, so to conclude our discussion, Nikhil, on World Heritage Day, as we celebrate World Heritage Day, it is clear that India's approach to heritage is not about preserving the past in glass cases. It's about creating living gateways, spaces where ancient wisdom and contemporary spirit meet, inspiring everybody to carry forward the timeless stories that define us all. And now moving on to our second topic in our Dateline section, that is Good Friday, Nikhil.
बिल्कुल, आज गुड फ्राइडे है, जिसे होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। इसे दिन के 3 बजे से 6 बजे तक मनाया जाता है और इस दिन को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने की स्मृति में मनाया जाता है। इस मौके पर चर्चों को सजाया जाता है और पर्व की शुरुआत बाइबल के पाठ से की जाती है। इसके बाद पवित्र क्रूज यात्रा शुरू होती है और फिर वापस चर्च पर आकर ही खत्म होती है। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद किया जाता है। और देश की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में गुड फ्राइडे पूरे राज्य में धार्मिक उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है।
Yes, and in the northeastern state of Mizoram, like Nikhil said, Good Friday has been observed in all parts of the state with all solemnity and religious fervor. Large number of people attended the special Good Friday Mass. Christian faithfuls were engaging in church service, offering prayers, worshiping and singing gospel hymns, marking the sacred occasion of Good Friday. Thousands of Christians participated in Way of the Cross processions and special prayers held at prominent churches across Puducherry.
और अभिषेक, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे ये जानने का कि क्या खास उनके पास है, क्या हम अपने श्रोताओं को सुनाने जा रहे हैं।
Yes, we start off with the first World Audio Visual and Entertainment Summit Waves, a milestone event for the media and entertainment sector, will be hosted by the Government of India in Mumbai from May 1st to 4th, 2025. A total of top 10 participants have been shortlisted for the Resonate the EDM Challenge, who are going to perform live at the grand finale on the global stage of Waves. Resonate the EDM Challenge, a marquee competition under the Create in India Challenge to run up to the Waves 2025, brought together global talent in electronic dance music to celebrate innovation, creativity and collaboration in music production and live performances. We have more from a correspondent.
The Ministry of Information and Broadcasting, in collaboration with the Indian music industry, announced the names of the top 10 shortlisted participants for Resonate the EDM Challenge. These top 10 artists represent a vibrant cross-section of India's electronic music community with unique sounds ranging from ambient to high-energy dance music. The challenge aimed to unearth and elevate Indian as well as global emerging talent in electronic music production and DJing. Speaking to Akashvani News, Shrikant Vemula, the top finalist from Mumbai, shared his joy and gratitude for the opportunity to showcase his talent on such a prestigious platform.
Hi, I'm Shrikant, one of the top finalists for the Waves EDM Challenge. The purpose of this competition gives me a big opportunity to showcase my music and skills, and gives me exposure and a big platform to reach a wider audience and connect with many other artists. Thank you, Ministry of Information and Broadcasting. Thank you, Indian Music Industry and Lost Stories Academy, for this amazing opportunity at the Waves Summit.
These shortlisted finalists are now going to prepare for their grand finale performance, where they will present their talent on the Waves global stage. Madhuri Pange for Parikrama from Mumbai.
और श्रोताओं, मुंबई से ले चलते हैं आपको विजयवाड़ा। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी यानी कि ITDA चिंतूर ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में टसर रेशम उत्पादन में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पारंपरिक कौशल को स्थायी आजीविका में बदलने के लिए डिजाइन की गई इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय जनजाति आबादी के लिए एक सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य बुनना है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास।
As part of government's continued mission to foster self-reliance and sustainable income for tribal communities, a transform into training program into Sar Silk Yarn Processing and Weaving has been launched at the Vandhan Vikas Kendra in Allur Sitaramaraj district of Andhra Pradesh. With over 1500 tribal participants, predominantly from the Koya community, actively engaged, the initiative marks a significant step in converting traditional forest-based practices into viable livelihood opportunities. To further build expertise, 50 carefully selected individuals will receive specialized 6 months training from Master Weavers of Chhattisgarh, featured, bringing in rich experience and skill to the local landscape. The program's core aim is to impart value-added skills that not only preserve indigenous knowledge but also boost income generation. The Department of Sericulture is overseeing the sessions to ensure high-quality training and impactful outcomes. This focused initiative stands as a testament to the government's dedication to inclusive development, enabling tribal communities to thrive through skill building, dignified work, and sustainable growth. Sai Sisla for Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
With drug abuse becoming rampant, violent crimes on the rise, in Kerala, spurring the state government to launch a massive campaign with the support of the public and various wings of the government machinery. Underlining the seriousness of the situation, the government told the State Assembly recently that 588 children below 18 years of age had sought therapy from state-run addiction centres during January to February this year. We have more from a Kochi correspondent.
Drug abuse in Kerala is an important concern, and the state has been grappling with an increasing number of people falling victim to substance use and addiction. Over the years, the state has seen a rise in the consumption of various drugs, particularly amongst the youth and other vulnerable groups. Substance abuse has penetrated schools, colleges and workplaces, affecting young minds and endangering the state's future. The rise in the availability of opioids, narcotics, marijuana and synthetic drugs has played a major role. A few months ago, a survey done by the State Excise Department among 62,700 individuals revealed that 9% had tried drugs even before they turned 10 years of age, 70% by the age of 15 and another 20% by 19 years of age. A recent police departmental survey identified 1,377 drug peddling black spots in 472 police station jurisdictions in the state. The state government has launched a massive campaign involving government departments and various sections of the society to educate the public, particularly students, about the dangers of drug abuse. The issue remains a complex and ongoing challenge that requires a combination of law enforcement, awareness and mental health support. The situation calls for adopting a more cohesive and inclusive strategy coupled with bold and transformational action while focusing on sustained efforts of prevention, enforcement, rehabilitation and community development. Raj Mohan, Akashwani, Kochi.
और श्रोताओं, आप चलते हैं हम खेल के मैदान में, जानते हैं कि क्या हलचलें आजकल हो रही हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आईपीएल क्रिकेट का, जिसमें आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के अभी तक 6 मैचों में 8 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स से आगे है और तालिका में तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल रात मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक शानदार मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया था।
यस, एंड इन स्क्वैश इंडियाज वीर चोटरानी एडवांस टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप एशिया क्वालिफायर एट कुआलालंपुर मलेशिया टुडे विद अ कम फ्रॉम बिहाइंड विन ओवर मलेशियाज मोहम्मद सियाफिक कमल and second seed at Chotrani defeated the sixth seed Kamal 9-11, 11-6, 11-6, 11-7 to book his spot in the last four. However, in the women's singles, Tanvi Khanna exited the tournament after falling 5-11, 6-11, 12-10, 9-11 to Helen Tang of Hong Kong in the quarterfinals. Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 18th of April 1930, the Chittagong Armory Raid was carried out under the leadership of Master Da Surya Sen.
Armory ko guard karne ke liye sirf mutthi bhar sipahi maujood the. Goron ko lagta tha कि कोई हिंदुस्तानी उनकी हुकूमत के एक मील दूर तक भी नहीं फटक सकता।
Surya Sen and his fellow freedom fighters were part of a revolutionary group of nationalists called Indian Republican Army, who believed in using force to fight the British. The group included Ganesh Ghosh, Loknath Bal, Ambika Chakrabarti, Hari Gopal Bal, Ananta Singh, Anand Prasad Gupta, Tripura Sen, Bilash De, Vidhu Bhushan Bhattacharya, Preeti Lata Vadedar, Kalpana Datta, Himanshu Sen, Vinod Bihari Chaudhary, Subodh Roy and Monoranjan Bhattacharya.
The armory in police line in Dampada was captured by a group of revolutionaries led by Ganesh Ghosh, while another group led by Loknath Bal took the auxiliary forces armory.
We need to use one gun. Stop! Stop! AFI armory se machine guns lane ki zimmedari Loknath aur Nirmal da ki thi.
The revolutionaries succeeded in cutting telephone and telegraph wires and disrupting train movements. However, they failed to locate ammunition.
Sab kamron mein dekh liye, kahin kuch bhi nahi
hai. Yahi honi chahiye thi.
Do din muqabla nahi kar pa. Shehar mein ghusna to bahut dur ki baat.
About 16 of the group captured the European club's headquarters in Pahartali. After the raids, the revolutionaries gathered outside the police armory, where Surya Sen took a military salute, hoisted a national flag, and proclaimed a provisional revolutionary government.
Abhi isi waqt kuch der pehle yahan aisa kuch hua hai jo na kabhi dekha gaya na kabhi socha gaya.
British hukumat ko uski jadon se hi hila diya. झिझोड़ दिया और यह किसी ट्रेन फौज ने नहीं किया है, यह किया है कुछ चंद बच्चों ने, तुम लोगों ने, तुम सब ने, तुम सब उसके हिस्से हो। इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं।
Thus, Chittagong was free for 4 days from the British Raj. But when the British sent reinforcements, the revolutionaries left Chittagong town and marched towards the Chittagong Hill Ranges and continued the battle from Jalalabad Hills.
We also remember freedom fighter Tatya Tope, who was executed by the British on the gallows on the 18th of April, 1859. One of the most notable generals in the First War of Indian Independence of 1857, Tatya lacked formal military training, but is widely considered as the best and most effective generals of the independence movement.
Tatya was born in 1814 in Pune, Maharashtra. His father, Pandurang Rao Tope, shifted to Bithur in Kanpur, where Tatya became a close friend of Nana Saheb.
Bharatpur mein chingari phadak chuki hai. Ab aag sare Hindustan mein phail jayegi.
Lekin Tatya
kab tak sochte rahenge Nana Saheb?
Yahi mauka hai. Is paar ya us paar.
Tatya Tope also came in close contact with Rao Saheb and Rani Lakshmi Bai.
Maharani Lakshmi Bai ki jai ho.
Viraji hai Tatya.
Waqt aa gaya hai. Socha tha usse pehle.
Haan, isi pal ka to 100 saal se intezaar tha.
In May 1857, when the political storm was gaining momentum, Tatya won over the Indian troops of the East India Company stationed at Kanpur, established Nana Saheb's authority on them and became the commander-in-chief of the independence activists.
After the British reoccupation of Kanpur, Tatya Tope, with the support of the Gwalior contingent, forced General Windham to retreat from Kanpur. When Jhansi was besieged by the British forces, Tatya Tope shifted his headquarters to Kalpi.
With 20,000 men, he came to the rescue of Rani Lakshmibai. Later on, Tatya sieged the fort of Gwalior with the help of the Gwalior contingent, but he was defeated by General Hugh Rose.
Tatya had a natural instinct for guerrilla tactics and evaded British pursuits for 10 months in Rajasthan, Malwa, Bundelkhand and Khandesh in the marathon chase of about 2,800 miles through forests and hills.
He was eventually betrayed by his trusted friend Man Singh on the 8th of April, 1859. Tatya was convicted and executed at Shivpuri on the 18th of April, 1859.
और अब समय हो चला है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर है जन्मदिवस। सबसे पहले हम याद कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को।
अल्बर्ट आइंस्टीन पास्ड अवे इन दिस डे 1955। ही वाज अ जर्मन बॉर्न फिजिसिस्ट बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्वांटम मैकेनिक्स। हिज मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर व्हिच अराइजेस फ्रॉम स्पेशल रिलेटिविटी हैज बीन कॉल्ड एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन। He received the 1921 Nobel Prize in Physics for his services to theoretical physics, especially for his discovery of the law of the photoelectric effect.
जी हाँ, उनके बारे में आपको बताएं तो आइंस्टीन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, केशकीय गति, क्रांतिक उपच्छाया, सांख्यिकी मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन विस्तार, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्रीय सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीयकरण शामिल हैं। आपको बता दें कि आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान की किताबें लिखी थी। वर्ष 1999 में टाइम पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष के नाम से घोषित किया और एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आइंस्टीन शब्द को आज बुद्धिमानी का पर्यायवाची भी माना जाता है।
Taylor Pyle passed away this day, 1945. He was an American journalist and war correspondent, best known for his stories about ordinary American soldiers during World War II. Pyle is also notable for his columns as a roving human interest reporter from 1935 through 1941 for the Scripps Howard newspaper syndicate, which earned him wide acclaim for his simple accounts of ordinary people across North America. When the United States entered World War II, he lent the same distinctive, folksy style of his human interest stories to his wartime reports from the European theater. Pyle won the Pulitzer Prize in 1944 for his newspaper accounts, Dogface Infantry Soldiers from a First-Person Perspective. He was killed by enemy fire during a battle of Okinawa.
और आज ही हम याद कर रहे हैं बारिंद्र कुमार घोष को। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे एक स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार थे। उन्हें बारिंद्र घोष के नाम से भी जाना जाता है और वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। आपको बता दें कि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बारिंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए 1906 में बंगाली साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन आरंभ किया था और 1907 में क्रांतिकारी गतिविधियों का संयोजन करने के लिए मणिकतल्ला पार्टी का गठन भी किया था। 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बारिंद्र कुमार घोष बंगाली दैनिक द स्टेट्समैन और वसुमित्र से भी जुड़े थे।
सतीश चंद्र मुखर्जी पास्ड अवे दिस डे 1948। ही पायनियर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अलोंग विद श्री औरबिंदो, founder editor of the Dawn magazine and organ of Indian nationalism. In 1902, he organized the Dawn Society of Culture to protest against the report of the Indian Universities Commission representing the inadequate university education imposed by the government to fabricate clerks for the merchant offices. The cry for thorough overhauling of the whole system of university education was in the air, and in 1889 he formulated the scheme for national education.
Aaj hi punyatithi hai G. Subramaniam Iyer ki. Ve Bharat ke jane mane patrakar aur pramukh बुद्धिजीवी थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया और स्त्रियों की स्थिति के सुधार पर भी काफी बल दिया था। हिंदू और स्वदेश मित्रम नामक समाचार पत्र उन्होंने निकाले थे।
हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1809। ही वाज एन इंडियन पोएट एंड असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज कोलकाता। ही वाज अ रेडिकल थिंकर ऑफ हिज टाइम एंड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एजुकेटर्स टू डिसेमिनेट वेस्टर्न लर्निंग एंड साइंस अमंग द यंग मेन ऑफ बंगाल। लॉन्ग आफ्टर हिज अर्ली डेथ हिज लेगेसी लिव्ड ऑन अमंग हिज फॉर्मर स्टूडेंट्स हू केम टू बी known as young Bengals, and many of whom became prominent in social reform, law, and journalism.
आज ही पुण्यतिथि है पांडुरंग वामन काणे की। वैसे तो उन्हें हिंदी, संस्कृत, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू और फारसी का ज्ञान था, लेकिन संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान के रूप में माने गए।
Eric Anthony Roberts was born on this day in 1956. He is an American actor. He has amassed more than 700 films and television credits since his debut in 1978, making him one of the most prolific English-speaking screen actors of all time. Roberts' career began with a leading role in King of Gypsies in 1978, for which he received his first Golden Globe Award nomination.
आज जयंती है ललिता पवार की, जिन्हें हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री माना जाता है। भारतीय नारी का जीवन जीते हुए एक संजीदा कलाकार के रूप में उन्होंने कई यादगार फिल्में दी, जिनमें जंगली की सख्त मां, श्री 420 की केला बेचने वाली महिला और आनंद की संवेदनशील मातृ छवि को कैसे भुला सकते हैं। आइए सुनते हैं ये डायलॉग।
यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं प्रार्थना कर रहा था।
कहाँ भाग गए थे?
घर।
घर?
डॉक्टर बनर्जी के घर।
कैसे क्यों नहीं गए?
मैं डर गया था।
मालूम है तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डांटा है मुझे।
तो क्या हुआ, आप भी तो डांट रही है मुझे।
बातें बहुत करते हैं।
बहुत ज्यादा, इसलिए तो भाग गया था। बातें किए बगैर मैं रह नहीं सकता, और आप मुझे चुपचाप कैबिन में सुला देना चाहती हैं।
मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ?
और चलते चलते श्रोताओं, याद कर रहे हैं हम अभिनेत्री पूनम ढिल्लो को, जिनका की आज जन्मदिन है। और अभिषेक, फिलहाल वक्त ये हो चला है कि हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का समय नहीं बचा है, तो श्रोताओं, निखिल और अभिषेक को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
नमस्कार।
नमस्कार।